समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट रेशमा तिवारी। रेशमा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता, एंड गुड आफ्टरनून लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड इन टू परिक्रमा ऑन FM गोल्ड एट 100.1 मेगाहर्ट्ज़। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। All these over the next 30 minutes. But we begin with the news headlines first. Indian agencies begin rescue operations in Myanmar's severely hit Ula Thein Monastery in Friday's earthquake. Army team to set up their medical services from tomorrow.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के 443 न्यायाधीशों सहित 582 न्यायिक अधिकारियों को स्थानांतरित किया।
Indian Air Force to participate in multinational air exercise in Iokos 25 in Greece from today.
ईद उल फित्र का त्यौहार आज पूरे देश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
And in IPL cricket, Mumbai Indians to take on Kolkata Knight Riders at Wankhede Stadium this evening. So Akarshita, now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today, we'll talk about Eid al-Fitr and indigenous games mentioned in PM's Mann Ki Baat.
Eid al-Fitr aaj desh mein dharmik shraddha aur ullas ke saath manai ja rahi hai. Ye parv Ramzan mahine ke samapan ko darshata hai. ईद उल फित्र के मुबारक मौके पर सभी देशवासियों, विशेष रूप से मुस्लिम भाइयों और बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। यह त्यौहार भाईचारे की भावना को मजबूत बनाता है तथा करुणा भाव और दान की प्रवृत्ति को अपनाने का संदेश भी देता है। इस दिन लोग अपने रिश्तेदारों और परिजनों से मिल रहे हैं और एक दूसरे को मिठाइयां और शुभकामनाएं दे रहे हैं।
President Draupadi Murmu, Vice President Jagdeep Dhankar and Prime Minister Narendra Modi have greeted the nation on the occasion of Eid al-Fitr. President Murmu said in a social media post that this festival strengthens the feeling of brotherhood and gives the message of adopting compassion and charity. She wished, "May this festival bring peace, prosperity and happiness in everyone's life and strengthen the spirit of moving forward on the path of goodness."
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ईद उल फित्र के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ईद लोगों को उनकी सांस्कृतिक विविधता और उन्हें एकजुट करने वाले सामान्य बंधनों से मिलने वाली ताकत की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार भारत की विविधतापूर्ण लोकतंत्र की आधारशिला है।
In a social media post, Mr. Modi expressed hope that this festival should enhance the spirit of hope, harmony and kindness in the society. He wished joy and success in everyone's endeavors.
The festival marks the culmination of the fasting holy month of Ramzan. The faithful offer Eid prayers in Eidgah and mosques. In Delhi, people gathered at Jama Masjid, Fatehpuri Masjid and Sahi Eidgah for the special Eid prayers, followed by warm exchanges of greetings. The markets near Delhi's Jama Masjid decorated for the festival. Elaborate security arrangements have been made for the occasion. Ramzan, the ninth month of the Islamic lunar calendar, is observed as a fasting period by Muslims over the world who abstain from food and water during the period between sunrise to sunset. On this day, relatives, friends and families are welcomed and offered meethi sevai and delicious food. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
In Jammu and Kashmir, the Shawwal, that is the first day of Islamic month Shawwal crescent, was sighted across Jammu and Kashmir last evening. The Grand Mufti, Mufti Nasirul Islam, confirmed the sighting of Shawwal moon, marking the end of holy month of Ramadan. A report.
ईद उल फित्र इस्लाम में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिसे विशेष प्रार्थनाओं, दावतों और दान के कार्यों के साथ मनाया जाता है। श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के अन्य स्थानों के बाजारों में खरीदारी में वृद्धि देखी गई। इस अवसर पर लोग दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलते हैं, बच्चों को अपने माता पिता और बड़ों से नकद उपहार ईदी मिलती है, जिससे उन्हें खुशी हासिल होती है। तारिक रात्र, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर।
Moving on to our second dateline, someone once said, "In every real man, a child is hidden that wants to play."
क्या आप जानते हैं कि खेल का मेरा पसंदीदा हिस्सा क्या है? खेलने का अवसर। ये कहना है माइक सिंगलीट्री का। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी खेलों के विषय पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब स्वदेशी खेल भी लोकप्रिय हो रहे हैं। उन्होंने मशहूर रैपर हनुमान काइंड के नए गीत रन इट अप की चर्चा की, जो इन दिनों बहुत लोकप्रिय हो रहा है।
मशहूर रैपर हनुमान काइंड का नया सॉन्ग रन इट अप काफी फेमस हो रहा है। इसमें कलारियापट्टू, गतका और थांगता जैसी हमारी पारंपरिक मार्शल आर्ट को शामिल किया गया है। मैं हनुमान काइंड को बधाई देता हूँ। उनके प्रयास से हमारी पारंपरिक मार्शल आर्ट के बारे में दुनिया के लोग जान पा रहे हैं। साथियों, हमारे स्वदेशी खेल अब पॉपुलर कल्चर के रूप में घुल मिल रहे हैं।
श्री मोदी ने कहा कि इस गीत में पारंपरिक मार्शल आर्ट के रूपों को शामिल किया गया है और इस गीत से हमारे पारंपरिक मार्शल आर्ट के बारे में दुनिया के लोग जान पा रहे हैं।
The sun is up, to wet it down, get your money up, I put money down, on all of us.
Mr. Modi highlighted that traditional martial arts like Kalariapayattu, Gatka and Thangta have been included in Hanumankind's song. He congratulated Hanumankind for its efforts in popularizing India's traditional martial arts.
मार्शल आर्ट विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं में निहित प्राचीन युद्ध प्रथाओं ने भारत में गहरा प्रभाव पाया है। शुरू में युद्ध के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ये कलाएं अब प्रदर्शन, अनुष्ठान, शारीरिक फिटनेस और आत्म सुरक्षा के लिए प्रचलित हो गई हैं।
मार्शल आर्ट्स लिटरली मीनिंग आर्ट्स एसोसिएटेड विद वेजिंग वॉर आर क्लोजली इंटरट्वाइंड विद डांस, योगा एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स इन इंडिया। These combat forms instill self-discipline and self-defense skills and promote respect, perseverance and inner strength, making them an integral part of India's cultural identity and a source of national pride.
और रेशमा, आप बात करते हैं उन खेलों की जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, जैसे कि कलरीपयट्टू। ये भारत की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट में से एक है, जिसकी उत्पत्ति तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास केरल में हुई थी। ये दक्षिणी भारत के अधिकांश हिस्सों में प्रचलित है और इसमें नकली द्वंद्व युद्ध, शारीरिक व्यायाम और लड़ाई की एक शैली शामिल है, जो मुख्य रूप से फुटवर्क, किक, स्ट्राइक और हथियार आधारित अभ्यास पर केंद्रित है। ये कराटे और कुंगफू सहित सभी मार्शल आर्ट रूपों का आधार बनता है। ये कला अभी भी पारंपरिक अनुष्ठानों और समारोहों में निहित है और इसमें उचिचिल ओट्टा, माईपयट्टू, पुलियाकम, वेरुमकाई और अंगथारी के साथ लड़ाई जैसी तकनीकें शामिल हैं। यहां तक कि महिलाएं भी इस कला का अभ्यास करती हैं और ये अब भी पारंपरिक अनुष्ठानों और समारोहों में निहित है।
यस, कलारीपयट्टू इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट साइंटिफिक मार्शल आर्ट फॉर्म्स इन द वर्ल्ड, एम्ड एट माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। According to mythology, the warrior sage Parashuram is credited with establishing Kalaripayattu. The term Kalari in Malayalam refers to a traditional gymnasium where this martial art known as Payattu is taught.
अब बात करते हैं गतका की, जिसे खुटका के नाम से भी जाना जाता है। गतका मार्शल आर्ट के साथ साथ एक आध्यात्मिक अभ्यास है। ये कला शारीरिक तड़क भड़क को पवित्र भक्ति के साथ जोड़ती है। गतका एक पंजाबी शब्द है, जिसका अर्थ है एक लकड़ी की छड़ी जिसका इस्तेमाल तलवारों की जगह किया जाता है।
Gatka uses the sword as a main weapon amongst others. Gatka has been divided into the traditional Rasmi and sports, khel style Some other shastras used in Gatka are khanda, double-edged sword, lati, gargaj, teer kaman, and chakkar.
गतका पंजाब में सिखों द्वारा किया जाने वाला एक हथियार आधारित मार्शल आर्ट है, जिसमें लाठी, कृपाण, तलवार और कटार जैसे हथियारों का कुशल उपयोग दिखाया जाता है। इस कला की आक्रमण और बचाव का निर्धारण हाथ और पैर की स्थिति और हथियार की प्रकृति से होता है। गतका को मेलों सहित विभिन्न समारोहों में प्रदर्शित किया जाता है और ये स्वतंत्रता और शालीनता का प्रतीक है। और रेशमा, हमने ये देखा भी है, मतलब हम उसका नाम नहीं जानते पर्टिकुलरली कि ये इसको कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में या कहीं भी इन सारे फॉर्म्स को देखा होता है, पर हम पहचान नहीं पाते उन्हें।
True, absolutely. And the Prime Minister also mentioned Thangta. Thangta Huyen Langlon is an Indian martial art from Manipur, which when broken, Huyen means war, while Langlon means net or knowledge. It has two main components, namely Thangta, armed combat, and Sarit Sarak, unarmed fighting. Literally broken down, Thang means sword and Ta means spear. The spear is to be used in its non-missile form, while the other one can be held close or thrown from afar.
मणिपुर के मैतेई लोगों द्वारा निर्मित सशस्त्र मार्शल आर्ट थांगता को सबसे घातक युद्ध रूपों में से एक माना जाता है। सरित सरक एक निहत्थे कला रूप है, जिसमें हाथ से हाथ का मुकाबला किया जाता है। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
In order to become Atmanirbhar in fish production by reducing dependency on imports, Tripura Fisheries Minister Sudhanshu Das has said that an integrated aqua park will be built at BC Nagar in Unakoti district of the state. Mr. Das informed this during a reply during the reference period in the ongoing budget session of the State Legislative Assembly that is scheduled to conclude tomorrow, April 1, 2025. Our Agartala correspondent has filed this report.
Tripura is among the tiny states in the country with a population of 40 lakhs. But when it comes to fish consumption, the state ranks second, making it dependent on other states in the country and also on neighboring Bangladesh to supply fish to meet the growing demand. In order to become self-reliant in fish production, the Tripura Fisheries Minister Sudhanshu Das has said that the state had sent a proposal of 100 crore rupees to the center for the project of integrated aqua park, out of which 43 crore rupees have been sanctioned by the center. The integrated aqua park will be built in an area spread across 500 acres and its main thrust will be on augmenting the fish production in the state. According to the minister, the IAP will aim for fish production to the tune of 5,000 metric tons annually.
Tripura have huge potentiality in fish consumption. According to the fishery data has concerned that more than 98% people are fish eater. So obviously, state of Tripura have lot of potentiality in terms of fish consumption as well as fish production. So that is why we have planned to create one big water bodies in Unakoti, BC Nagar area. And most probably the next week of April or second week of April, Honorable Union Fishery Minister will come and lay foundation stone over there. So our main target is to product more than 5,000 metric ton of fish from that particular project, and side by side we are also aiming for creating income generation from that particular area. We have taken a lot of initiative to make our state self-reliant in terms of fish production.
Tripura is the second highest fish consuming state in the country, as 99% people prefer fish items in their daily meals. In order to boost up the production, the Tripura government has been implementing the Mukhyamantri Matsya Vikas Yojana from 2023-24 alongside the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. The minister asserted that unutilized ponds in the state will also be revived for increasing the fish production. Kunal Shinde for Parikrama from Akashwani News, Agartala.
जैसे जैसे वेब्स 2025 मई महीने में अपना पहला भव्य आयोजन करने के लिए तैयार हो रहा है, देश भर में हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से कई प्रतिभाएं उभरकर सामने आ रही हैं। मुंबई वेब्स एनिमे और मांगा प्रतियोगिता हाल ही में संपन्न हुई, जिसने इसी लहर को आगे बढ़ाया। अधिक जानकारी हमारी मुंबई संवाददाता से।
वैम मुंबई में नौसिखियों और पेशेवरों दोनों का जोश देखने को मिला और उन्होंने एनिमे और मैंगा के लोकप्रिय किरदारों को जिंदा कर दिया। वॉइस एक्टिंग श्रेणी में गणेश चिंस्कर ने एक से अधिक किरदारों को बड़ी सहजता से आवाज देकर शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। आइए सुनते हैं उनसे कि वे वेव्स को किस नजरिए से देखते हैं।
जो आर्टिस्ट है, जो उभरते हैं और वो जो प्रोफेशनल भी है, उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है, नए नए आर्टिस्ट से मिलने के लिए मौका मिल रहा है, और जो इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट है उन लोगों से भी मिलने का मौका मिल रहा है। बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिल रही है और हमारी जो क्रिएटिविटी है वो क्रिएटिविटी पे हम काम कर रहे हैं। जो नॉन कमर्शियल आर्टिस्ट है उनको कमर्शियल आर्टिस्ट से मिलने का मौका मिल रहा है। इस इंडस्ट्री में आने के लिए जो पाथ है वो पाथ किस प्रकार से हम खुद का तैयार कर सकते हैं वो हमें जानने को मिलता है। इस वेव्स कॉम्पिटिशन में बहुत सारे कैटेगरीज के आर्टिस्ट को लाया गया है, तो उन आर्टिस्ट को अपना हुनर सबके सामने दिखाने का मौका मिल रहा है। और सभी आर्टिस्ट में कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है, तो वो विशेषताएं इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स के सामने पेश करने का मौका मिलता है। उससे क्या होता है कि वो जो इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट है उनको भी ये पता चलेगा कि इस देश में बहुत सारा टैलेंट है और उसमें से बहुत सारे टैलेंट्स को मौका भी मिल जाएगा आगे, तो वो बहुत अच्छी चीज होगी।
वैम मुंबई में जीत के बाद गणेश राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने के लिए तैयार है। परिक्रमा के लिए मुंबई से अंकित आप्टे।
The Andhra Pradesh government has launched the P4 initiative yesterday on the occasion of Telugu New Year Ugadi, aimed at eradicating poverty and ensuring economic stability for every family in the state. More on this from our correspondent.
In line with Viksit Bharat 2047 as part of Swarnandhra Vision, the Zero Poverty P4 initiative follows a unique model that brings together the public, private sector and communities to support underprivileged families. Under this program, financially well-off families known as Markadarsis will voluntarily support economically weaker families called Bangar Kutumbams. This approach is designed to create a network of mentorship and assistance where families that have achieved financial stability help others move towards self-sufficiency. To facilitate this process, a dedicated digital platform has been introduced that allows benefactors to identify families in need and extend their support through a structured and transparent system. This initiative is expected to bring a significant shift in social welfare by encouraging collective responsibility and community-driven development. With technology, structured mentorship and voluntary participation, the Andhra Pradesh government aims to create a future with zero poverty in the state. Sai Sishla for Parikrama, Akashwani, Vijayawada.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
इन मायामी ओपन टेनिस याकूब मेंसिक हैज क्रश्ड नोवाक जोकोविच्स ड्रीम टू विन 100th टूर लेवल टाइटल। द 19-year-old चेक बीट द 6-time मायामी ओपन चैंपियन इन द फाइनल ऑफ द मेंस सिंगल्स इन फ्लोरिडा 7-6, 7-6 टुडे। विद दिस विन मेंसिक ऑल्सो बिकेम द सेकेंड यंगेस्ट चैंपियन ऑफ द टूर्नामेंट बिहाइंड कार्लोस अल्काराज who lifted the trophy in 2022 as an 18-year-old.
IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस आज शाम 7:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ मुकाबला करेगी। वहीं कल खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स को 6 रनों से हरा दिया।
Indian tennis star Yuki Bhambri has broken into the top 30 of the ATP doubles ranking, achieving a career high ranking of 26. He also became India's number one doubles player, ending veteran Indian player Rohan Bopanna's 5.5-year reign at the top. Bopanna has now dropped to rank 44. Bhambri, along with his partner Nuno Borges of Portugal, recently reached the quarterfinals of the prestigious Miami Open but fell to the British duo of Lloyd Glasspool and Julian Cash 6-7, 6-3, 8-10.
आगरा समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे पोषण अभियान से कुपोषण का निवारण विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अजय वर्मा और एम्स की आहार विशेषज्ञ डॉ. ऋचा जायसवाल शामिल होंगी। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं। नंबर है 0112342 1050 और 0112331 4444।
And listeners, now we'll take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
31 मार्च का दिन भारत में सामाजिक और आर्थिक सुधार आंदोलन को लेकर अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1867 में इसी दिन बॉम्बे में प्रार्थना समाज यानी प्रेयर सोसाइटी का गठन किया गया था। इसे सुविख्यात संस्कृत विद्वान आर जी भंडारकर, आत्माराम पांडुरंग, नारायण चंदावरकर और महादेव गोविंद राणाडे का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।
इस आंदोलन में शामिल प्रमुख सुधारक ऐसे प्रबुद्ध जन थे जिन्होंने हिंदू धर्म से जुड़ी सामाजिक व्यवस्थाओं में सुधारों का समर्थन किया। तेलुगु सुधारक वीरेश लिंगम ने दक्षिण भारत तक इस आंदोलन का प्रसार किया।
प्रार्थना समाज ने समकालीन सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं तथा धार्मिक आस्थाओं के बीच संबंधों की गहराई से विवेचना की और ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू किए जा चुके राजनीतिक बदलावों की तुलना में सामाजिक सुधारों को प्राथमिकता दी। प्रार्थना समाज के दो मुख्य कार्यक्षेत्र थे, उपासना और सामाजिक सुधार।
राणाडे धार्मिक पुनरुत्थानवादी थे जिन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान अधिकांश कुरीतियां पहले से प्रचलित मान्यताओं के कारण हैं। उनके साथ समाज सुधार के दो अन्य प्रणेता थे, ढोंडो केशव कर्वे और विष्णु शास्त्री।
राणाडे और कर्वे ने विधवा विवाह आंदोलन चलाया और विधवाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए विधवा गृह संघ की शुरुआत की। देश के किसी भी अन्य भाग में समाज सुधार आंदोलन इतना सफल और प्रभावी नहीं रहा जितना कि प्रार्थना समाज के तत्वावधान में महाराष्ट्र में साबित हुआ।
आज हम स्वतंत्रता सेनानी चीमा साहब का भी स्मरण कर रहे हैं जिन्हें ब्रिटिश अधिकारियों ने 31 मार्च 1858 को गिरफ्तार किया था। कोल्हापुर राज के शासक महाराजा भाव साहब के पुत्र चीमा साहब आजादी की पहली लड़ाई के दौरान 31 जुलाई 1857 तथा 6 और 7 दिसंबर 1857 के विद्रोह के प्रमुख संचालकों में थे।
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी के 27वें नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के अधिनायकों के साथ गोपनीय वार्ताएं की तथा कुछ भारतीय युवराजों और स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं को गुप्त संदेश भेजे। नाना साहेब पेशवा के दूत उनसे मिले।
चीमा साहब कोल्हापुर में बड़ी संख्या में स्वतंत्रता आंदोलन के कर्मठ कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में सफल रहे जो उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासकों के लिए गंभीर खतरा बन गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर बॉम्बे भेज दिया जहां से उन्हें 12 मई 1858 को कराची भेज दिया गया। कराची में उन्हें 11 वर्ष तक यानी 15 मई 1869 को अपनी मृत्यु के दिन तक हिरासत में रखा गया। इस महान स्वतंत्रता सेनानी चीमा साहब को हमारा शत शत नमन।
और अब समय है उन महान व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्म दिवस।
न जाओ सैया छुड़ा के मैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी।
इस यादगार गीत को सुनकर आपकी आंखों के सामने किसकी तस्वीर उभरती है? हिंदी फिल्मों के सबसे मार्मिक और त्रासद किरदारों में से एक, छोटी बहू की, और इस किरदार को निभाने वाली ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर हिंदी फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी की आज उनकी पुण्यतिथि है। उनका असली नाम महजबी बारू था। परिवार की आर्थिक हालत ठीक ना होने के कारण उन्होंने मजबूरी में 7 साल की उम्र में लेदरफेस नाम की फिल्म से बाल कलाकार के तौर पर अभिनय की शुरुआत की, लेकिन वो आगे चलकर उनका शौक बन गया। अभिनेत्री के तौर पर जिस फिल्म से उनकी पहचान बनी वो थी 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा। इसके बाद तो परिणीता, साहिब बीवी और गुलाम, पाकीजा, बहु बेगम, मैं चुप रहूंगी, फूल और पत्थर और अपनी जैसी यादगार फिल्मों का पूरा सिलसिला चल पड़ा। साहब बीवी और गुलाम में छोटी बहू के किरदार की तकलीफ और त्रासदी को उन्होंने जिस शिद्दत से निभाया वो आज भी जहन से निकला नहीं है। पाकिजा तो जो उनकी सबसे यादगार फिल्म मानी जाती है उसकी रिलीज के 2 महीने भी नहीं बीते थे जब आज ही के दिन उनका निधन हो गया।
चलते, चलते।
मीना कुमारी को आज भी उनकी दर्द भरी आवाज और भावनात्मक अभिनय के लिए याद किया जाता है। उन्हें 4 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। 2011 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। अभिनेत्री होने के साथ ही वे गायिका और शायरा भी थी। नायिका के रूप में उन्होंने कई फिल्मों के लिए अपने गीत खुद गाए। आइए सुनते हैं मीना कुमारी की लिखी एक गजल उनकी ही आवाज में।
चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा।
It's time to remember Sir Isaac Newton now. He was an English mathematician, physicist, astronomer, theologian and author who is widely recognized as one of the most influential scientists of all time and as a key figure in the scientific revolution. His book, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, first published in 1687, laid the foundations of classical mechanics. Newton used his mathematical descriptions of gravity to prove Kepler's laws of planetary motion, account for tides, the trajectories of comets, the precession of the equinoxes, and other phenomena, eradicating doubt about the solar system's heliocentricity. He demonstrated that the motion of objects on Earth and celestial bodies could be accounted for by the same principles.
विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजत्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमती है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके एक कंगाल आदमी राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। ये पंक्तियां हैं भारत के विशिष्ट निबंधकारों में से एक सरदार पूर्ण सिंह की। आज उनकी पुण्यतिथि है। वे देशभक्त, शिक्षाविद, अध्यापक, वैज्ञानिक एवं लेखक भी थे। इसके साथ ही वे पंजाबी के जाने माने कवि भी थे। आधुनिक पंजाबी काव्य के संस्थापकों में पूर्ण सिंह की गणना होती है। उनकी मुख्य रचनाएं हैं सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता आदि।
एंड लेट्स नाउ रिकॉल पीपल हु वर बोर्न टुडे। यस, बर्थ एनिवर्सरीज। गुरु अंगद वाज द सेकंड ऑफ द 10 Sikh Gurus. He was born in a Hindu family with the birth name as Lehna in the village of Harike, now Sarai Naga near Muktasar in northwest Indian subcontinent. Bhai Lehna grew up in a Khatri family and he met Guru Nanak, the founder of Sikhism, and became a Sikh. He served and worked with Guru Nanak for many years. Guru Nanak gave Lehna the name Angad and chose Angad as the second Sikh Guru instead of his own sons. After the death of Guru Nanak in 1539, Guru Angad led the Sikh tradition. He is remembered in Sikhism for adopting and formalizing the Gurmukhi alphabet based on the then prevalent local Devanagari script.
आज अंग्रेजी और मलयालम की प्रसिद्ध लेखिका कमला दास की जयंती है। इन्हें कमला सुरैया के नाम से भी जाना जाता है। उनकी मुख्य रचनाएं हैं माई स्टोरी, समर इन कैलकटा, द डिसेंडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स आदि। इन्हें साहित्य अकादमी, एशियन पोएट्री अवार्ड तथा कई अन्य पुरस्कारों से नवाजा गया है। कमला दास ने वर्ष 1984 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के दावेदारों की सूची में भी जगह बनाई थी।
आनंदीबाई गोपाल राव जोशी, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल इंडियन फीमेल फिजिशियन। शी वॉज द फर्स्ट वुमन फ्रॉम द एर्स्टवाइल बॉम्बे प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया टू स्टडी एंड ग्रेजुएट विद अ 2-year डिग्री इन वेस्टर्न मेडिसिन इन द यूनाइटेड स्टेट्स।
और हम आपको बता दें कि महज 9 साल की उम्र में आनंदी का विवाह कर दिया गया था और 14 साल की उम्र में वे मां बन गई थी, लेकिन जन्म के 10 दिन बाद ही बच्चे की मृत्यु हो गई। बच्चे की मृत्यु से आनंदी को इतना दुख हुआ कि उन्होंने डॉक्टर बनने की ठान ली। उन्होंने 21 साल की उम्र में एमडी की डिग्री हासिल की। वे एमडी की डिग्री हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और रेशमा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर। नमस्कार, नमस्कार।